नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्ष 2014 के मुकाबले 5 गुना बढ़कर 197 गीगावाट हुई। राज्य में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 34 आईपीएस अफसरों का तबादला। वरिष्ठ आईपीएस गोविंद गुप्ता एसीबी के नए महानिदेशक और सचिन मित्तल जयपुर के पुलिस आयुक्त बने। दीपोत्सव के तहत आज प्रदेश में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व परंपरागत रूप से मनाए जा रहे हैं। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत 1,43,000 किलो कबाड़ का निपटारा किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ये वर्ष 2014 के मुकाबले 35 गीगावाट की तुलना में 5 गुना से अधिक बढ़कर 197 गीगावाट हो गई है। बड़े पनबिजली संयंत्रों से उत्पादित बिजली इसके अलावा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। चालू वर्ष में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों ने 5.6 गीगावाट जबकि राज्य एजेंसियों ने 3.5 गीगावाट बिजली खरीद के लिए निविदा आमंत्रित की है। नौसेना कमांडरों का अर्धवार्षिक सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना के भावी अभियानों और तैयारियों के बीच 3 दिन का ये सम्मेलन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व और नौकरशाही के बीच निकट संपर्क और संवाद का प्रभावी मंच है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे और विकसित भारत 2047 की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। प्रमुख कमांडरों के साथ नौसेना प्रमुख भारतीय समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से किए जा रहे 2 दिन के इस सम्मेलन में मतदाता सूची से जुड़े विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो रही है। इस दौरान आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 12 जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक मुकेश राठौड़ ने अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की पूरी पालना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने चुनावी खर्च की सीमा सहित कानूनी प्रावधानों का पालन अनिवार्य बताया। वहीं पुलिस के उच्चाधिकारियों ने बामला और कोटड़ी तुलसा स्थित संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से निडर होकर मतदान करने की अपील की। इस उपचुनाव के लिए 21 अभ्यर्थियों ने 32 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 27 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद इस सीट पर उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राज्य में आज एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 34 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। कार्मिक विभाग के आदेशों के तहत वरिष्ठ आईपीएस गोविंद गुप्ता को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर लगाया गया है। वहीं आनंद कुमार श्रीवास्तव को महानिदेशक पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस के रूप में नियुक्त किया गया है। राजधानी जयपुर में सचिन मित्तल को बीजू जॉर्ज जोसेफ की जगह नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 आईपीएस ऑफिसर्स को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। विश्व विख्यात पशु मेला आज से शुरू हो गया है। 3 चरणों में आयोजित होने वाले इस मेले में विभिन्न राज्यों से ऊंट और घोड़े बिक्री के लिए लाए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील घिया ने बताया कि पशुपालन विभाग ने मेले में आने वाले पशुपालकों के वास्ते विशेष इंतजाम किए हैं। पशु मेले के साथ ही धार्मिक मेले के दौरान विभिन्न कार्यक्रम होंगे। एक रिपोर्ट।
पशुपालन विभाग की ओर से मेला कार्यालय बनाया गया है। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक मेला मैदान में पशुओं की अटखेलियां कैमरों में कैद कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को ध्वजारोहण के साथ मेले का औपचारिक उद्घाटन होगा। वहीं सांस्कृतिक मेले में इस बार कैमल और हॉर्स शो सहित कई रोचक गतिविधियां और पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मेला क्षेत्र में 2000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। दीपोत्सव के तहत आज प्रदेश में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। गोवर्धन पूजा के लिए श्रद्धालुओं ने गोबर से पारंपरिक गोवर्धन बनाए और आस्था के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद सामूहिक परिक्रमा भी की गई। गोवर्धन जी की सात कोसीय परिक्रमा के मार्ग में आने वाले डीग जिले के पूंछरिका लौठा में सुबह से ही पर्व की रंगत दिखाई दी। पाली में गोवर्धन कथा का आयोजन किया गया। अलवर के जगन्नाथ जी मंदिर में मूंग चावल बाजरे से विशेष गोवर्धन पर्वत बनाया गया। साथ ही भजन कीर्तन के कार्यक्रम हुए। झुंझुनू में सुबह से ही कृष्ण मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। वहीं सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के वासा गांव में इस मौके पर आज पारंपरिक गाय दौड़ का आयोजन हुआ।
प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कृष्ण उपदेश और गौ माता की पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद गाय दौड़ का शुभारंभ हुआ। इस साल हुई गाय दौड़ प्रतियोगिता में सफेद रंग की गाय सबसे आगे रही, जिसे शुभ संकेत माना जा रहा है। परंपरा के अनुसार सफेद गाय के विजयी होने से आने वाला साल शुभ माना जा रहा है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
धौलपुर में गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना और परिक्रमा की गई, साथ ही आतिशबाजी की गई। बारा में भी गोवर्धन पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया और मंदिरों में अन्नकूट रखा गया। आज अन्नकूट पर जयपुर के विभिन्न मंदिरों में प्रसाद बांटा गया। पाली में 56 भोग की झांकी सजाई गई। वहीं चित्तौड़गढ़ में भी पारंपरिक रूप से अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है।
मेवाड़ के प्रख्यात कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी में भी गौशाला में गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना कर परंपरागत रूप से बेलों की पूजा की गई। आज अन्नकूट होने के चलते श्री सांवलिया जी में शाम को महाआरती के बाद 15 क्विंटल मालपुए और 25 क्विंटल मिक्स सब्जी का प्रसाद सांवलिया जी को भोग धराकर श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। श्री सांवलिया जी में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में गुजरात और महाराष्ट्र के श्रद्धालु अन्नकूट महोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। अजय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़।
कोटा, सलूमबढ़, डूंगरपुर और झुंझुनू में भी अन्नकूट के व्यंजन बनाए गए हैं और प्रसाद बांटा जा रहा है। कल भाई दूज के साथ दीपोत्सव सम्पन्न होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर 98 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। इन ट्रेन के 956 फेरे होंगे। इसके साथ ही 60 नियमित ट्रेनों में 175 अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया कि प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। स्टेशन परिसर में यात्रियों को रोकने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। और अब मौसम। प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सबसे कम करीब 16 डिग्री सेल्सियस तापमान सिरोही में दर्ज हुआ। जिले के माउंट आबू में इस बीच गुलाबी सर्दी के कारण लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। भरतपुर में भी सुबह शाम की हल्की ठंडक के बीच खेतों में रबी फसलों की बुवाई के लिए गहमा गहमी बढ़ गई है। एक रिपोर्ट।
किसान सरसों के साथ ही गेहूं चना की फसल की तैयारी में जुट गए हैं। जिले की मुख्य सरसों की फसल पैदा करने के लिए किसान खेतों में जुताई कर रहे हैं, साथ ही कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर मिट्टी की जांच कराकर खेतों में उत्तम किस्म के बीज व खाद डालकर उन्नत फसल की कामना कर रहे हैं। अब की बार क्षेत्र में अच्छी बरसात भी किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। खेतों में नमी आ गई है, जिससे किसानों को आगामी फसल बेहतर होने की उम्मीद जगी है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के दौरान बादल छाए रहने और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत 493 आउटडोर अभियान चलाए और 973 स्थानों तथा 104 वाहनों की सफाई की। मंत्रालय ने बताया कि अभियान के दौरान 1,43,000 किलो कबाड़ का निपटान किया गया। इससे मंत्रालय को 34 लाख रूपये से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ और 8,000 वर्ग फुट से ज्यादा जगह खाली हुई। अभियान के तहत कुल 301 जन शिकायतों का निपटारा भी किया गया। भारत ने विश्व के कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर आकर वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इंडोनेशिया के बाली में खाद्य और कृषि संगठन की ओर से जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले आकलन में भारत 10वें स्थान पर था, ताजा आकलन में 9वें स्थान पर आना एक बड़ी उपलब्धि है। श्री यादव ने कहा कि वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के धुवाना में अब जल्द ही नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम लिमिटेड यानी रीको को 82.5 हेक्टेयर भूमि आवंटन की मंजूरी दी है। आवंटित भूमि पर केवल गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा सकेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्ष 2014 के मुकाबले 5 गुना से अधिक बढ़कर 197 गीगावाट हुई। राज्य में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 34 आईपीएस अफसरों का तबादला। वरिष्ठ आईपीएस गोविंद गुप्ता एसीबी के नए महानिदेशक और सचिन मित्तल जयपुर के पुलिस आयुक्त बने। दीपोत्सव के तहत आज प्रदेश में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व परंपरागत रूप से मनाए जा रहे हैं। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत 1,43,000 किलो कबाड़ का निपटारा किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।